नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, कविंद्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ की ग्रहण, प्रदेश के विकास व जन कल्याण के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आईएसबीटी शिमला से प्रदेश के लिए प्रीपेड टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, सीबीएसई स्कूलों में तैयारी का अभाव, बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं करवा पाई सरकार। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, वर्तमान वित्त वर्ष में एचपी शिवा परियोजना के तहत खर्च की जा रही है 100 करोड़ की राशि। और प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने आगामी बजट से पहले पेंशनरों की लंबित देनदारियों का समाधान करने की सरकार से की मांग। अब समाचार विस्तार से। कविंद्र गुप्ता हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने आज लोकभवन शिमला में आयोजित सादे मगर गरिमामय समारोह में कविंद्र गुप्ता को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित अन्य गणमान्य अन्य व्यक्ति मौजूद रहे। कविंद्र गुप्ता हिमाचल प्रदेश के 30वें राज्यपाल बने हैं। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रगति के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं और वे इसी भावना के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।
किस प्रकार के हो, इस पर मेरी प्राथमिकता रहेगी। विकास का जहाँ तक सवाल है, वहाँ आपस में हमारा समन्वय बने, सरकार के साथ भी विपक्ष के साथ, पहाड़ी प्रदेश की वो ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सब मिल करके। राज्यपाल के रूप में किसी की कोई पार्टी नहीं होती, इसलिए सब समाज को लेकर के चलना मेरी प्राथमिकता रहेगी।
कविंद्र गुप्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है। उन्होंने कहा कि वे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, विशेष रूप से राज्य में हरित क्षेत्र में विस्तार, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और धार्मिक पर्यटन को मजबूत करने की दिशा में कार्य करेंगे।
जो सेवा करने का मौका मुझे हिमाचल प्रदेश में मिला है, मैं उसको ठीक प्रकार से निभा पाऊं। अक्सर मैं बोलता हूं, पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। हिमाचल के विकास के लिए जिस प्रकार से ये सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर्यटन के बहुत संभावनाएं हैं, यहाँ पर लोगों का जो आतिथ्य है, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं। जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी के दौरान यहाँ का जो पर्यटन है बहुत बड़ा है, यहाँ एक रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है।
राज्यपाल ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भारतीय मूल्यों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ते हुए युवाओं के कौशल विकास के लिए विशेष प्रयास करने की प्रतिबद्धता जताई।
शिक्षा में गुणवत्ता और कौशल विकास पर ध्यान देना, यह भारत सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, और आने वाले समय में मैं किस प्रकार से उनका सहयोगी बन के काम करूं, ऐसा मेरी कोशिश रहेगी। और युवा कल्याण, प्रधानमंत्री जी बार बार जिक्र करते हैं, इस देश का 65% जो युवा है, उसी के कारण से भारत युवा देश है। हम सभी ने 2047 का एक सपना लिया है, जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तो उसमें युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल बनता है।
कविंद्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला के अंतरराज्यीय बस अड्डा टूटीकंडी से प्रदेश के लिए प्रीपेड टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। इस सुविधा के तहत यात्री आईएसबीटी टूटीकंडी स्थित प्रीपेड टैक्सी काउंटर से टैक्सी बुक करवा सकते हैं। ये प्रीपेड टैक्सी सेवा शिमला शहर के भीतर 26 स्थानों को कवर करेगी, साथ ही चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहित चंडीगढ़ शहर को भी इसमें शामिल किया गया है। इस सेवा में कुल 115 वाहन शामिल होंगे, जिनका संचालन टैक्सी यूनियन द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, क्योंकि किराया दरें परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित की गई हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस टैक्सी सेवा से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को विश्वसनीय व सुव्यवस्थित यात्रा का अनुभव मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने बिना तैयारी के कुछ स्कूलों में सीबीएसई के तहत पढ़ाई शुरू कर दी है, लेकिन एक महीने का समय बीत जाने के बाद भी विद्यार्थियों को किताबें भी मुहैया नहीं करवा पाई है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार को बच्चों के लिए समय पर किताबें उपलब्ध करवाने पर ध्यान देना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीबीएसई स्कूल के नाम पर कहीं भी स्पष्टता नहीं है और इन स्कूलों में तैयारी का पूरी तरह अभाव है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सीबीएसई स्कूल में कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो इसमें जाने के इच्छुक भी नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि सरकार सीबीएसई के तहत कुछ स्कूलों में पाठ्यक्रम शुरू कर रही है तो उसे पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए ताकि उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में एचपी शिवा परियोजना के तहत मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि बागवानों को प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने आज सोलन जिला में कंडाघाट के डेढ़ घराट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र का औचक निरीक्षण करने के बाद ये बात कही। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। बागवानी मंत्री ने कहा कि पुष्प क्रांति में भी सोलन सहित प्रदेश के बागवान बेहतरीन कार्य कर रहे हैं।
हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से खासकर सोलन के यहाँ पर शिवा प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे क्लस्टर्स हैं जिसपे करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं और बाकी जो हमारे विभिन्न योजनाएं हैं उनको हम चलाए रखे हुए। एक स्टेज होता है हर स्कीम का, लोगों तक उसको पहुंचाना है, टेक्निक को पहुंचाना है, उसके बाद लोग स्वयं जो है उसमें अब बहुत सक्षम हो गए हैं। खासकर उस क्रांति में अगर आप देखें तो सोलन डिस्ट्रिक्ट काफी आगे निकला है।
केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना में त्रिस्तरीय ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापन किया जाता है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा सांसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योजना के तहत चंबा जिला सहित अन्य दुर्गम क्षेत्रों के आवेदकों की सहायता के लिए सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से नामांकन की सुविधा प्रदान की जाती है। सिकंदर कुमार द्वारा चंबा जिला में पारंपरिक शिल्प के लिए विशेष रियायती बीमा शुरू करने की योजना के बारे में पूछे गए सवाल पर शोभा करंदलाजे ने बताया कि चंबा में पारंपरिक कारीगरों के लिए अलग से रियायती व्यापार जोखिम बीमा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि पात्रता होने पर लाभार्थी मौजूदा सरकारी योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा व बीमा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्य सरकार से आगामी बजट से पहले पेंशनरों की लंबित देनदारियों को लेकर बातचीत के माध्यम से समाधान की मांग की है। समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने शिमला में कहा कि 21 मार्च को पेश होने वाले बजट से पहले सरकार ने अगर पेंशनरों की मांगों पर विचार नहीं किया तो 30 मार्च को बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर दिया जाए कि आप हमारे को विधानसभा सेशन से पहले पहले हमारे से बात तो कर लो, और अगर ये हमारे को बुलाते हैं 16 से पहले तो ठीक है, अदरवाइज हमारा ये फैसला है ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कि पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में हम एक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखेंगे। अगर फिर भी हम देखेंगे कि बजट जो माननीय मुख्यमंत्री प्रेजेंट करेंगे अब उसमें कुछ सकारात्मक चीजें लगेगी, अगर कोई 70-80% देने की कोई बात माननीय मुख्यमंत्री सब डिफरेंट हेड्स रखेंगे तो ठीक है, अदरवाइज हमारा एक रैली धरना प्रोजेक्शन और विधानसभा का घेराव 30 तारीख को प्रस्तावित है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कविंद्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ की ग्रहण। प्रदेश के विकास व जन कल्याण के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ISBT शिमला से प्रदेश के लिए प्रीपेड टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, सीबीएसई स्कूलों में तैयारी का अभाव, बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं करवा पाई सरकार। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा वर्तमान वित्त वर्ष में एचपी शिवा परियोजना के तहत खर्च की जा रही है 100 करोड़ की राशि। और प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने आगामी बजट से पहले पेंशनरों की लंबित देनदारियों का समाधान करने की सरकार से की मांग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।